ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अमेरिका यात्रा कार्यक्रम को मंत्रिपरिषद ने दे दी है मंजूरी। भाद्र 10 गते को आई भोटेकोसी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 7 खरब 23 अरब रुपए से अधिक खर्च होने का है अनुमान। नुआकोट स्थित तांदीखोला पुल का पुनर्निर्माण कर में लाया गया संचालन। धादिंग के गलछी से रसुआ के धुंचे तक सड़क संपर्क पर दिया गया जोर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री के रूप में दीपक शाह नियुक्त। और चीन में कार्गो जहाज में आग लगने से 25 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में सहभागिता संबंधी विदेश भ्रमण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने असो 6 से 10 गते तक होने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की 81वीं महासभा में भाग लेने के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने यह जानकारी दी। बैठक ने भारत की नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेपाल इंडिया इंटर गवर्नमेंटल सब कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए नेपाली वार्ता टोली गठित करने और अनुचित लेन देन मीटर ब्याज अपराध नियंत्रण संबंधी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देने का निर्णय किया है। यह जानकारी प्रवक्ता पोखरेल ने दी। बैठक ने काठमांडू भक्तपुर ललितपुर सप्तरी और दांग जिलों के कुल 27 स्थानीय तहों के 17,438 गरीब परिवारों की सूची को मंजूरी देने का निर्णय किया है। इसी तरह शिक्षक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ हरिप्रसाद लमसाल, सदस्य के रूप में रामशरण सापकोटा और महिला सदस्य के रूप में विष्णु घिमरे रिमाल को नियुक्त करने का निर्णय भी बैठक ने किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भोटेकोसी बाढ़ में लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य को और तेज करने पर जोर दिया है। सांसदों ने बाढ़ प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष पैकेज, उद्योगी व्यवसायियों के लिए राहत तथा प्रभावित क्षेत्रों में बीमा व्यवस्था जल्द लागू करने की मांग की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल राहत के साथ दीर्घकालीन पुनर्वास की व्यवस्था करने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की तलाश, बचाव तथा पुनर्स्थापना को प्रभावी बनाने की मांग की है। सांसदों ने एलपी गैस की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और जेंजी विद्रोह के दौरान मृतकों के परिजनों तथा घायलों के साथ किए गए समझौतों को पूरा करने की भी सरकार से मांग की। राष्ट्रीय सभा ने नेपाल विशेष सेवा आयन 2042 की पूर्व व्यवस्था को बहाल करने संबंधी विधेयक 2083 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। बैठक में सांसदों ने बाढ़, भूस्खलन, हिमताल और हिमपहिरो जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रभावी पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। नेपाली कांग्रेस के सांसद सुनील बहादुर थापा ने भोटेकोसी बाढ़ के बाद जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए पत्र को सार्वजनिक करने की मांग की। सांसदों ने भोटेकोसी बाढ़ से हुए नुकसान का वैज्ञानिक मूल्यांकन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम प्रभावी बनाने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। इसी तरह एलपी गैस की कालाबाजारी रोकने और राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में पैसे नहीं होने के कारण प्रसूता को अस्पताल से निकालने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दीपक कुमार शाह ने आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के समक्ष पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की उपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यालय में आज आयोजित समारोह में नवनियुक्त मंत्री शाह ने शपथ ली। इससे पहले आज ही उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपा था। पद बहाली करने के बाद मंत्री दीपक कुमार शाह ने कहा कि खाना बनाने वाली एलपी गैस के बिक्री वितरण में दिख रहे समस्या समाधान की ओर मैं गंभीर होकर काम करूंगा। भोटेकोसी नदी की विनाशकारी बाढ़ से बह गया तादी खोला पुल पुनर्निर्माण कर फिर से चालू कर दिया गया है। पुल संचालन में आने के साथ ही धादिंग के गलची से रसुआ के धुंचे तक सड़क संपर्क बहाल हुआ है। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर क्षेत्र में अवरुद्ध सड़क को भाद्र महीने के भीतर फिर से चालू करने के लिए निर्माण कार्य तेज किया गया है। पहाड़ काटकर करीब 250 मीटर नया ट्रैक बनाने के लिए 10 महीने और 30 कर्मचारी लगाए गए हैं। 10 मशीनें और 30 कर्मचारी लगाए गए हैं। सशस्त्र पुलिस ने निर्माण स्थल पर फ्लाइट लाइट लगाई है, जिससे रात में भी रोजाना 12 से 14 घंटे काम हो रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
सजिलो छ है एन्टी एप, अहिले नै डाउनलोड गर, 1 GB डेटा फ्रीमा प्राप्त गरौ।
हातमा एन्टी एप छ त सजिलो सुविधा लिन,
रिचार्ज गर्न होस् या ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न, अल डिटेल डेटा भोइसको स्ट्याटस थाहा पाउन, गिफ्ट ब्याक पठाउन वा फाइबर इन्टरनेटको जानकारी पाउन। सजिलो छ है एन्टी एप, अहिले नै डाउनलोड गर, 1 GB डेटा फ्रीमा प्राप्त गरौ।
प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी हानि और नुकसान कोष ने नेपाल के पत्र का जल्द से जल्द जवाब देने के लिए पहल किए जाने की जानकारी दी है। विनाशकारी भोटेकोसी बाढ़ से हुए नुकसान के तत्काल संबोधन के लिए नेपाल ने भाद्र 15 गते कोष को पत्र भेजा था। कोष ने आज वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले और कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी को पत्र भेजकर नेपाल के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और संकटों से निपटने के लिए भू राजनीतिक सहयोग सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी बताया है। प्रतिनिधि सभा की कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की आज की बैठक में सांसदों ने भोटेकोसी और त्रिशूली बाढ़ से कृषि एवं प्राकृतिक स्रोतों को हुए भारी नुकसान के बाद नदी और पर्वत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल पर जोर दिया है। उन्होंने आपदा के बाद पर्यावरणीय पुनर्स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु न्याय और क्षतिपूर्ति का मुद्दा मजबूती से उठाने की आवश्यकता बताई। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन में नेपाल का योगदान नगण्य होने के बावजूद नेपाली नागरिक इसके गंभीर प्रभाव झेल रहे हैं। ललितपुर में आज दक्षिण एशिया वन्य जीव कानून परिवर्तन नेटवर्क की पहली महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत कानून, सक्षम संस्थाएं, पर्याप्त संसाधन और प्रभावी समन्वय जरूरी है। एशिया कि जैव विविधता की रक्षा साझा जिम्मेदारी है। कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने कहा है कि सरकार कानून और नीतिगत स्तर पर मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की आज की बैठक में उन्होंने कहा कि फैसलों के कार्यान्वयन में कुछ समस्याएं सामने आई है, इसके लिए नीतिगत अस्पष्टता जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने बताया है कि पूर्वी चीन के एक बंदरगाह पर खड़े विदेशी झंडे वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। सीसीटीवी के मुताबिक जहाज पर सवार 42 लोगों में से 17 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालात स्थिर है। राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने इससे पहले बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए कहा है। जहाज मेंटेनेंस ने पूर्वी चीन के किंगदाओ शहर में एक शिपयार्ड में खड़ा था। तभी स्थानीय समय अनुसार करीब 11:15 बजे इसमें आग लग गई। सीसीटीवी के अनुसार इस आग पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा समय लगा। समाचार एजेंसी एएफपी को एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जहाज से घना धुआं उठ रहा था। सरकारी मीडिया की ओर से जारी तस्वीरों में जहाज का नाम ओशिन मेलोडी दिखाई दिया। यह लाइबेरिया के झंडे वाला 190 मीटर लंबा मालवाहक जहाज है, जो ट्रैकिंग साइट मैरिन ट्रैफिक के अनुसार 31 अगस्त को किंगदाओ पहुंचा था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अमेरिका यात्रा कार्यक्रम को मंत्रिपरिषद ने दे दी है मंजूरी। भाद्र 10 गते को आई भोटेकोसी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए 7 खरब 23 अरब रुपए से अधिक खर्च होने का है अनुमान। नुआकोट स्थित तादी खोला पुल का पुनर्निर्माण कर में लाया गया संचालन। धादिंग के गलची से रसुआ के धुंचे तक सड़क संपर्क पर दिया गया जोर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री के रूप में दीपक शाह नियुक्त। और चीन में कार्गो जहाज में आग लगने से 25 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।